सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सवसाहूणम जय धवलंगते नाउरियसयलभुवन भवन गणो केवल नाण शरीरो अनंजनो नाम चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र पर रची हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक और श्री यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। उसमें जो प्रथम अधिकार पेज दोष विहत्ति, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए, 55। कल हमने कुछ गाथा यहाँ पढ़ी थी 7 से लेकर 10 तक। कर्मों की बात यहाँ चल रही है, जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए हैं ये बात बता दी, और मूर्त और अमूर्त का संबंध कैसे हो सकता है, तो यदि नया बंध होना है तो बात अमूर्त का मूर्त से नहीं बन सकता। जैसे सिद्ध भगवान है अमूर्त है और उनके मूर्त कर्म का बंध नहीं होता है, परंतु जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न जो कृत्रिम कहा था उसको, उसमें ये बात नहीं आती है। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि मूर्त कर्म जो है जीव द्रव्य से संबद्ध होते हैं तो ये बिना वजह से नहीं हो सकते, अहेतुक नहीं हो सकते, उसका कारण कुछ होना ही चाहिए कि जिसके कारण कर्म बंध रहे हैं, यानी कर्म का बंध हो रहा है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि सम्यक तो संयम और विरागता से तो बंध नहीं होता है, तो इसके विपरीत जो मिथ्यात्व है असंयम है और कषाय है इसी से बंध होता है। उसके लिए उन्होंने गाथाएं भी प्रस्तुत कर दी। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 55 पर नीचे जो 44 लिखा है जय धवलाकार की बात यहाँ उसको अभी हम पढ़ेंगे। 43 वो उसके 43 नंबर के वो उनकी टीका में हमने देखा था कि कर्म ज्ञान और दर्शन का समूल पूरा का पूरा नाश नहीं कर सकते, उसका कुछ न कुछ अंश प्रकट रहता ही है। अब आगे हम बढ़ेंगे। यदि कहा जाए कि अकृत्रिम होने से कर्म की संतान विच्छिन्न नहीं होती है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्या कहते हैं कि अकृत्रिम होने के कारण कर्म का जो संतान यानी वो परंपरा जो उसके प्रवाह रूप से चला रहा है, बंध है उसका उदय है फिर बंध है उदय ये जो चल रहा है, तो वो विच्छिन्न नहीं हो सकते यानी मिट नहीं सकती। पहले बताया था ना अनादि है इसलिए अकृत्रिम है, इसलिए वो मूर्त और अमूर्त का बंध कैसे हो ये सवाल नहीं पैदा होता। तो कहते अनादि है यानी अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है तो वो मिट नहीं सकता, यानी कभी कर्मों का अभाव नहीं होगा ऐसा कोई कहता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम होते हुए भी बीज और अंकुर की संतान का विनाश पाया जाता है। बीज में से अंकुर और फिर वृक्षों में से फिर बीज और फिर अंकुर, ये जो परंपरा चली आ रही है, तो जहाँ बीज सेके जाते हैं या जले जाते हैं जलते हैं तो उसकी परंपरा नष्ट भी हो सकती है। ऐसे ही दूसरी बात, कृत्रिम संतानी से भिन्न संतान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जिसका संतान होते हैं वो संतानी नहीं, आवाज आ रही देखो फिर तो कृत्रिम संतानी से भिन्न संतान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जिसे अकृत्रिम कहा जाए, यानी संतान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये कर्म है तो उसी की परंपरा कहेंगे हम, अकेला कोई संतान नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो जिसका जिसकी संतान कही जाती है वो संतान ही वहां हुए बिना अकेले संतान नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं संतानी से भिन्न संतान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जिसे अकृत्रिम कहा जाए। यदि कहा जाए कि अशेष आश्रव के विरोधी सकल संवर के उत्पन्न हो जाने पर भी कर्मों के आश्रव परंपरा विच्छिन्न नहीं होती है, वो विच्छिन्न बराबर है क्या, ल आया बीच में, छ के बदले ल आया, विच्छिन्न अर्थात बराबर बराबर हुआ, बराबर चालू रहती है। क्या कहना चाहते हैं कि आश्रव का विरोधी संवर है, पूर्ण रूप से संवर प्रकट हो जाने पर भी कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता। यदि ऐसा कोई कहे तो पूर्ण संवर कहां पर है, तेरहवें में योग है ना, चौदहवें में, हाँ तो कहते हैं तो भी आश्रव की परंपरा विच्छिन्न होती है, चालू ही रहती है, ऐसा कोई कहे सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना युक्ति से बाधित है। अर्थात सकल प्रतिपक्षी कारण के होने पर कर्म का विनाश अवश्य होता है, प्रतिपक्षी कारण संपूर्णपणे विद्यमान है, कर्म के प्रतिपक्षी संपूर्णपणे विद्यमान है तो कर्मों का विनाश होना ही चाहिए। अतः आश्रव के प्रतिपक्षी संवर के होने पर भी आश्रव का चालू रहना युक्ति से बाधित है, ये पूर्ण संवर की बात की थी। सकल संवर रूप सम्यक्त्व संयम वैराग्य और योग निरोध, योग निरोध को भी लिया ना उसमें, क्योंकि वो भी आश्रव है। तो सकल संवर रूप ऐसे जो सम्यक्त्व भी है, संयम उसके बाद कॉमा लगाना, वैराग्य और योग निरोध, हमने तो आश्रव कौन कौन से देखे थे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, प्रमाद को उसी में गर्भित, चार में अगर डिवाइड करना है तो ये होते, और ये उससे विपरीत है, वो तो आश्रव थे और उसके प्रतिपक्षी ये चार हो गए, सम्यक्त्व संयम वैराग्य और योग निरोध, इनका एक साथ स्वरूप लाभ नहीं होता है, अर्थात ये धर्म आत्मा में एक साथ नहीं रहते, ऐसा मानना भी युक्त नहीं है। अलग अलग जो मान्यता है उसमें से एक एक मान्यता को लेकर उसका निराकरण कर रहे हैं, क्योंकि इनकी युगपत प्रवृत्ति युगपत वृत्ति मानने में कोई विरोध नहीं है, यानी युगपत उनके होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है एक साथ। दूसरे सम्यक्त्व संयम वैराग्य और योग निरोध, इनकी एक साथ प्रवृत्ति देखी भी जाती है और देखी हुई वस्तु में यह नहीं बन सकता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि एक साथ वो तो पाए जाते हैं, सभी हमने देखे चौदहवें में हो जाते हैं। अब शंका, पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्व आदि सभी कारणों की वृत्ति एक साथ भले ही देखी जाओ, परंतु किंतु परिपूर्णता को प्राप्त हुए उन सम्यक्त्वादी की वृत्ति एक साथ नहीं देखी जाती है। क्या कहते हैं, ये जो सम्यक्त्व संयम वैराग्य और योग निरोध है, उससे पार्शल निवृत्ति हुई, एक देश हुई, वो तो एक साथ हो सकती है, परंतु सब परिपूर्ण एक साथ नहीं हो सकती, ऐसे शंकाकार का उसकी शंका है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि जो सम्यक्त्वादिक अपरिपूर्ण अवस्था में एक साथ रह सकते हैं, आदि में सभी चारों को लेना, यानी अपरिपूर्ण अभी अधूरी दशा में वो एक साथ रह सकते हैं, वे परिपूर्णता के कारण मिल जाने पर परिपूर्ण होकर भी अक्रम से रह सकते हैं, अक्रम का अर्थ एक साथ रह सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं ना, गुण हो अक्रम है और पर्याय क्रम सर होती है, तो अक्रम ने एक साथ, चारों ही एक साथ होते हैं परिपूर्ण अवस्था में, इसमें कोई दोष नहीं। यदि कहा जाए कि संवर सर्वकाल में अर्थात कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, नहीं कभी भी वो होता ही नहीं परिपूर्ण संवर, ऐसा कोई माने सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि जो वर्धमान है उनमें से कोई भी कहीं भी नियम से अपनी अपनी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। क्या कहते हैं, ये न्याय की भाषा है। तो कहते हैं जो अभी परिपूर्ण नहीं है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ऐसी एक स्टेज आए कि वो उत्कृष्ट पने को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, पहले तो विकार थे या आवरण था, आवरण हटते 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 एक स्टेज आ जाती कि निरावरण हो जाता है पूर्ण, दोष यानी कषाय आदि जो है, यहाँ मिथ्या तो कषाय आदि, वो घटते 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 संपूर्ण निर्दोष होता है जीव। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि संवर शुरू हुआ है और वर्धमान है ने बढ़ रहा है, तो उसकी उत्कृष्ट अवस्था को वो प्राप्त होगा ही। यतः संवर भी एक हाथ प्रमाण ताल वृक्ष के समान वृद्धि को प्राप्त होता हुआ पाया जाता है, इसलिए किसी भी आत्मा में उसे परिपूर्ण होना ही चाहिए। क्या कहते, ये ताल वृक्ष एक हाथ प्रमाण था और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, वैसे ही संवर भी शुरू जो हो गया है वो बढ़ते बढ़ते उत्कृष्टता को प्राप्त होगा ही। ताल वृक्ष तथा जिस प्रकार खान से निकले हुए स्वर्ण पाषाण का अंतरंग और बहिरंग मल निर्मूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आश्रय भी कहीं पर निर्मूल विनाश को प्राप्त होता है, अन्यथा आश्रय की हानि में तरतम भाव नहीं बन सकता। क्या कहते, ये यहाँ फिर दोबारा दूसरा उदाहरण देते हैं, स्वर्ण पाषाण, सोना जो खदान में मिलता है वो तो मिट्टी में मिली हुई अवस्था में ही पाया जाता है, किसी ने मिला नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले प्योर सोना था और फिर बाद में वो मिट्टी आके उसमें मिली हो, उसी कंडीशन में उसी हालत में वो पाया जाता है, और बाद में उस पर जो अग्नि में तपाया जाता है तो उसमें से उसकी किट्टी माँ काली माँ दूर हो जाती है। अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग बहिरंग में इन्हें अन्य धातु मिली हुई वो भी निकल जाती है और मिट्टी आदि जो है वो भी जलकर नष्ट हो जाती है और प्योर शुद्ध सोना उपलब्ध हो जाता है। वैसे यहाँ भी आश्रय का भी बिल्कुल परिपूर्ण नाश हो जाता है, समूल निर्मूल विनाश को प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो आश्रय में जो हानि तरतम भाव देखता है, हानि में तरतम भाव, थोड़ी हानि हुई, बहुत हानि हुई और अधिक हानि हुई, ऐसा देखने में नहीं आता, परंतु ऐसा तो पाया जाता है, तो उसकी परिपूर्ण हानि भी होनी चाहिए आश्रय की, और संवर की परिपूर्ण उत्कृष्ट अवस्था भी होनी ही चाहिए। शंका, पूर्व संचित कर्म का क्षय किस कारण के से होता है, उसका समाधान, कर्म की स्थिति का क्षय हो जाने से उस कर्म का क्षय हो जाता है। फिर शंका, स्थिति का विच्छेद, हाँ देखो देखो, पूर्व संचित कर्म ने पहले बांधे हैं और सत्ता में पड़े हैं, तो उस कर्म का क्षय कैसे हो जाता है। हाँ, तो स्थिति यानी उस निषेक रचना जो हुई है या कर्म की जो स्थिति पड़ी है अंदर, वो स्थिति का क्षय हो जाना, स्थिति नष्ट हो जाना, तो घटते घटते स्थिति संपूर्ण नष्ट हो जाएगी, लास्ट निषेक बिखिर जाएगा, तो कर्म का क्षय हो जाएगा। तो फिर शंका, स्थिति का विच्छेद किस कारण से होता है, यानी स्थिति जो नष्ट हो जाती है वो किस कारण से होती है, उसका समाधान, कषाय के क्षय होने से स्थिति का विच्छेद होता है। देखो यहाँ स्थिति में भी सत्ता की स्थिति और बंध की स्थिति ऐसा भी ले सकते हैं। पहले में पहले हम बंध की बात करेंगे, क्यों नया बन रहा है तो नया लगातार बन रहा है, तो जब तक कषाय है तब तक स्थिति तो बंधेगी ही। स्थिति बनती है अर्थात एक समय में जितने कर्म परमाणु आए हैं वो विशिष्ट काल तक जीव के प्रदेशों में बंधे हुए पड़ेंगे, और आबादा काल परिपूर्ण पूर्ण हो जाने के बाद उसका निरंतर उदय चल रहेगा जब तक उसकी स्थिति है। तो जब तक कषाय है तब तक ही स्थिति बनती है, अनुभाग भी तब तक ही बनता है। तो जब स्थिति ही नहीं बंधेगी और पहले ऑलरेडी बंधे हुए निकल जाएंगे तो ये स्थिति का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा देखो, स्थिति का विच्छेद। अभी स्थिति का विच्छेद में हम बंध की बात करेंगे, स्थिति बंध का विच्छेद होना, स्थिति बंध मिट जाना। पहले स्थिति का बंध होता था, अभी स्थिति का बंध नहीं होगा, ये कब पॉसिबल है? हाँ, कषाय कब नष्ट होती है? दसवें के अंत में, क्योंकि दसवें के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का बंध है और वहां तक स्थिति भी बनती है। ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को साता वेदनीय तो बनती है, परंतु उसकी ना स्थिति है ना अनुभाग है। तो कषाय के क्षय होने से स्थिति का विच्छेद होता है। कषाय है ना, सूक्ष्म कषाय है ना, दसवें में सूक्ष्म लोभ है, वहां नया कषाय नहीं बन रहा, परंतु अन्य प्रकृतियां बन रही है, वहां उसकी स्थिति भी बन रही है। अर्थात यहां लिखा ना, स्थिति का विच्छेद होने ने नवीन कर्मों में स्थिति नहीं पड़ती और कर्मों की पुरातन स्थिति का विच्छेद हो जाता है। अब ये विच्छेद किस तरह से होता है, उसका अपकर्षण कैसे होता है, स्थिति कांडक कैसे होते हैं, वो तो अलग विषय है, परंतु नई स्थिति नहीं बनती और पुराने स्थिति का घटना हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, कहा भी है। अब ऊपर की जो 11 नंबर की गाथा प्रस्तुत की है उन्होंने, कम्मम जो अणिमित्तम बज्जई कम्मठिदी कसायवसा ताणम भावे बंध ठिदीण भावा सड़ई संतम। नीचे उसका अर्थ दिया है, योग के निमित्त से कर्मों का बंध होता है। कम्मम जो अनिमित्तम, जो अने जोग अने योग, योग के निमित्त से कर्मों का बंध होता है। कम्मम जो अनिमित्तम बज्जई, और कषाय के निमित्त से कर्मों में स्थिति पड़ती है। कम्मठिदि कषाय वसा, वसा यानी वश, कषाय के वश से यानी कषाय के निमित्त से। इसलिए योग और कषाय का अभाव हो जाने पर, ताणम अभावे, ताणम उन दोनों का अभाव होने पर, बंध ठिदीण अभावा सड़ई संतम, बंध और स्थिति का अभाव हो जाता है और उससे सत्ता में विद्यमान कर्मों की निर्जरा हो जाती है। नया बंध रुकता है और सत्ता में पड़े हैं वो खिर जाते हैं, निर्जरा होते हैं। अथवा दूसरी बात, तपसे पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है, कहा भी है। यानी कर्मों का जो क्षय होना वो कैसे होता है, तपसा निर्जरा हमने सूत्र भी सुना है ना, कहाँ सुना है? तत्वार सूत्र में। तो यहाँ कहते हैं कि तपसे पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है, कहा भी है। उसके लिए ऊपर 12 नंबर दिया है गाथा को, उसको पढ़ेंगे। नाणम पयासयम तवो सोहो संजमो यगुत्तियरो तिन्नम पिसमाजो ए मोखो जिन सासने दिठो। उसका अर्थ नीचे लिखा है, ज्ञान प्रकाशक है, नाणम पयासयम, तप शोधक है, तवो सोह ओ, और संयम गुप्ती करने वाला है, संजमो या गुत्तियरो। क्या कहते हैं, ज्ञान प्रकाशक है, तप शोधक है और संयम गुप्ती करने वाला है। अतः ज्ञान तप और संयम इन तीनों के मिलने पर मोक्ष होता है। तिन्नम्पि समाजोए, उनका योग होना, तीनों का इकट्ठा आना, उस पर मोक्ष होता है, ऐसा जिन शासन में कहा है। तप शोधक है, शोधक है ना उसका, शुद्ध करने वाला है या शोधन करने वाला, शोधन करना है ने भी हम कहते हैं ना, यानी उसके विकार नष्ट होकर शुद्धता प्राप्त होना। यदि कहा जाए कि आवरण के क्षय हो जाने पर भी केवल ही निरावरण सूर्यमंडल के समान परिमित पदार्थ को ही प्रकाशित करते हैं, सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है। यानी ये क्षायिक ज्ञान है ना, आवरण क्षय हो जाने पर, यानी ज्ञान आवरण का परिपूर्ण नाश होने पर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, परंतु वो लिमिटेड पदार्थों को ही प्रकाशित करते हैं, जानते हैं, ऐसे मानने वाले भी हैं, तो कहते हैं ऐसा युक्त नहीं है, क्योंकि सर्व पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, सर्व पदार्थ विधि निषेधात्मक है, सर्व पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, और सर्व पदार्थ एकानेकात्मक है। यदि ऐसा न माना जाए तो उनका अस्तित्व नहीं बन सकता, क्योंकि पदार्थ जो सत है उसका सत का लक्षण ही उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक बताया था, और ये विधि निषेध सामान्य विशेष एक अनेक, ये अनेकांतात्मक तो पदार्थ का स्वरूप होता है। इत्यादि हेतुओं से उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान की उपलब्धि सावरण जीव में भी पाई जाती है। क्या कहते हैं, इन समस्त पदार्थों को विषय करने वाले सावरण भी कोई जीव होते हैं क्या? नहीं होते, कौन होते हैं? अवधि ज्ञानी तो सब पदार्थों को विषय नहीं करते, केवल रूपी पदार्थों को ही विषय करते, वो भी लिमिटेड। श्रुत ज्ञानी परोक्ष द्वारा जानते हैं ना, जो भगवान ने केवल ज्ञान में जाना और बताया दिव्य ध्वनि में, उसको श्रुत ज्ञानी भी, इसलिए सावरण ज्ञानी भी जानते ऐसा कहा। इससे निश्चित होता है कि केवल ही सर्व पदार्थों को जानते हैं। यानी हेतुओं के द्वारा हमने पदार्थों को विषय किया, कौन कौन से हेतु देखो, कि सभी पदार्थ उत्पाद व द्रव्यात्मक है, सभी निषेधात्मक विधि निषेधात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, सभी पदार्थ एकानेकात्मक है, और ऐसा नहीं मानेंगे तो उसका अस्तित्व, तो सभी पदार्थ ऐसे है ऐसा जाना ना हमने, तो सभी पदार्थों को कथनचित हमने विषय किया कि नहीं किया? तो ये कहते ये सावरण वाले भी इतना तो जान सकते हैं, और निरावरण वाले नहीं जानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कहा जाए सब सावरण जीव भी उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक आदि रूप से समस्त पदार्थों को जानता है, तो आवरण कर्म चाहिए ना, कम हुआ है, तो आवरण कर्म निष्फल हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, ये जो उत्पाद वे ध्रुवात्मक रूप से समस्त पदार्थों को जानेंगे तो आवरण कर्म का कुछ काम नहीं, आवरण कर्म के होते हुए भी जानते हैं तो वो तो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई कार्य नहीं दिखेगा, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष विषय में आवरण का व्यापार होता है, अर्थात आवरण के क्षय हो जाने पर जिस प्रकार केवली को समस्त पदार्थों की उन अवस्थाओं का पृथक पृथक रूप से ज्ञान होता है, उस प्रकार सावरण मनुष्य को उनका ज्ञान नहीं होता, केवली प्रत्येक पदार्थ को जानते हैं, पृथक पृथक जानते हैं, और हम कैसे उत्पाद व्यय आदि रूप सभी पदार्थ ऐसे है ऐसा जानते हैं, और उनको तो प्रत्येक एक एक सिंगल परमाणु की भी अनादि अनंत अवस्था है, कौन सा उत्पाद है कौन सा व्यय है उस समय की बात हो, अनादिकाल से अनंत काल तक की एक एक समय वाली वो सभी जानते हैं और पृथक पृथक जानते हैं। सावरण वाला ऐसा तो नहीं जानता है, वो कैसा जानते हैं पदार्थों को, कि सभी पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, इस रूप से जानता है। इसी विशेष ज्ञान को रोकने में आवरण का व्यापार है, अतएव वह सफल है। ये जो केवली सभी पदार्थों के सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं, ऐसी जो विशेषता है इसको रोकने वाला वो आवरण कर्म है। इसलिए निरावरण केवली भूत भविष्यत वर्तमान सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट भी पदार्थों को जानते हैं। कल बातें आई थी नहीं, देखो क्या कहते हैं, केवली भगवान भूतकाल के पदार्थों को, वर्तमान के और भविष्य काल के पदार्थों के ने उनके समस्त पर्यायों को भी जानते हैं, सूक्ष्म ने परमाणु जैसे सूक्ष्म को भी जानते हैं, और केवल रूपी को ही नहीं वो कालानु भी सूक्ष्म है ना, एक प्रदेश है उसको भी जानते हैं। व्यवहित और विप्रकृष्ट, कल बात आई थी यहाँ मेरु आदि को क्या कहा था, 50 पृष्ठ पर देख लो, ये जो तीसरा पैराग्राफ है ना, 36 में से दूसरा परमाणु मिला, यदि कहा जाए कि जीव द्रव्य परमाणु आदि सूक्ष्म अर्थों को, मेरु आदि व्यवहित अर्थों को, और राम आदि विप्रकृष्ट अर्थों को, यानी व्यवहित यानी दूरवर्ती है, और राम आदि वो पूर्व में हो चुके हैं, काल की अपेक्षा अभी है ही नहीं है, उसीलिए ये द्रव्य संग्रह में दूरवर्ती और अंतरित और दूरवर्ती, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती, ऐसे तीन शब्द आए थे, वही बात यहां बताए। हाँ, अभी अंतरित और दूरवर्ती भी दोनों अपेक्षा से बताते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा, कहीं अंतरित काल की अपेक्षा से भी लेते हैं, कहीं क्षेत्र की अपेक्षा, हमें समझना है बस, यानी क्षेत्र से दूर हो या काल की अपेक्षा वर्तमान में न होते हुए भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, तो उन सबको जानते हैं। ये केवली के बारे में तो बहुत सारे संभ्रम चलते, ये हो चुका उसको तो जानते हैं, परंतु होने वाले को नहीं जानते, यदि जान लेते तो फिर हमारा क्या रहेगा पुरुषार्थ, प्रश्न क्या है, हम अपने चाहे जैसा करें वो हमारा पुरुषार्थ ऐसे मानते हैं, और फिर वो केवली ने जान लिया और हम ऐसा चाहे जैसा नहीं कर सकते तो हम पराधीन हुए, ऐसे जीवों की मान्यताएं हैं, वो अपनी विपरीत मान्यता चलाना चाहते हैं, इसलिए सर्वज्ञता के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्या ऐसा करते नहीं, उनका ही स्वरूप बिगाड़ देते हैं, उनका स्वरूप नहीं बिगड़ता, इनकी मान्यता और विपरीतता की ओर चली जाती है। तो कहते पृथक पृथक जानता है, इसी विशेष ज्ञान को रोकने में आवरण का व्यापार होता है, वह सफल है। इसलिए निरावरण केवली भूत भविष्यत वर्तमान सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट सभी पदार्थों को जानते हैं, यह सिद्ध होता है। केवल ज्ञानी क्या क्या जानते हैं उसकी यहाँ सिद्धि कर दी, इसी का विशेषार्थ फिर बताते हैं। पूर्व में केवल ज्ञान की वो दिख रहा है, केवल ज्ञान की अस्तित्व ने सिद्धि का जिन प्रमाणों के द्वारा विचार किया गया है वे इस प्रकार है। पहले भी हमने देखे थे और अभी ये फिर दोबारा पूरा ही इकट्ठा बता रहे हैं। घटादि पदार्थों में पूरे अवयवी का, अवयवी यानी वो पूरा पदार्थ, अवयव यानी उसका एक भाग, जैसे घट ये पदार्थ है तो पूरा घट वो अवयवी हुआ, और हमने एक साइड से उसको दिया ना, हमने फ्रंट व्यू है, बैक व्यू, जो कुछ है, टॉप से देखा है, बाजू से देखा, पूरा तो एक साथ नहीं दिखाई देता, चक्षु इंद्रिय की वो लिमिटेशन से। तो कहते घटादि पदार्थों में पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष ज्ञान न होकर जितना भाग दृष्टिगोचर होता है उतने भाग का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ये प्रत्यक्ष नहीं, जिसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते, इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष को यहाँ प्रत्यक्ष कहा है। जैसे खंबे को हमने देखा, ये खंबे के कितने भाग, कितने साइड से, इसको चार है, आपने कितनी देखी, दो ही दिख रही है आपको, परंतु चार है, पूरे को जाना कि नहीं जाना आपने, आप जान रही है, आपने तो अभी बताया चार साइड से उसको, और देख रही है दो ही, तो अवयव को देखकर पूरे अवयवी का ज्ञान हो रहा है आपको, प्रत्यक्ष तो दो ही दिख रहे हैं, अन्य दो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान हो सकता है। अवयव को देखकर पूरे का ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा हम जान सकते हैं। यही बात यहाँ बताते हैं कि जितना भाग दृष्टिगोचर होता है उतने भाग का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, फिर भी उससे पूरा अवयवी प्रत्यक्ष माना जाता है। हम आपको पूछेंगे कि आपने खुद अपने आंखों से देखा घट को, खंबे को देखा? हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। वो पूरा अवयव यानी पूरा जो पदार्थ है हमने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा भी कहते हैं। समस्त जगत का यही व्यवहार है, इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति देखी जाती है। अभीष्ट अर्थ क्या है? किसी वस्तु को जानना। तो उसका एक देश यानी अवयव जानकर हम पूरे वस्तु को जान सकते हैं, और उसको हमने प्रत्यक्ष देखा ऐसा कहते भी है, और समस्त व्यवहार इसी से होता है, तो इसको झुटला भी नहीं सकते। इसी प्रकार ये तो अभी दृष्टांत हुआ, सिद्ध क्या करना चाहते हैं ये बहुत महत्व की बात है। इसी प्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या होता है? आत्मा की अनुभूति। संवेदन के द्वारा प्रत्यक्ष किया ना अपने ही आत्मा को, तो केवल ज्ञान के अंशभूत मत्यादि ज्ञान का ग्रहण होने से, ये जो मति आदि ज्ञान है जिसके द्वारा हमने अपने आप को स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जाना अपने आप को, वो केवल ज्ञान के अंशभूत है। जैसे हमने खंबे के दो ही साइड देखकर चारों साइड होते हैं ये निर्णय कर लिया, ऐसे यहाँ अंशभूत मत्यादि ज्ञान का ग्रहण होने से, क्योंकि वो अपने अनुभव में अपने ज्ञान में आ रहे हैं ना, मति ज्ञान आदि जो है स्वसंवेदन ज्ञान अपने को समझ में आ रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे, केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात कि स्वानुभव से सर्वज्ञ की, केवल ज्ञान की सिद्धि, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, यद्यपि छद्मस्थों का ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, फिर भी उससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है। ये दूसरा महत्व का पॉइंट, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, पर संसारी जीवों का ज्ञान सावरण होने के कारण वह स्वयं अर्थों के ग्रहण करने में असमर्थ है। अभी छद्मस्थ अवस्था है और आवरण वाला, सावरण है ना, आवरण सहित वाला ज्ञान है, तो अपने आप पदार्थों को ग्रहण करने में असमर्थ है। जैसे केवल ज्ञान बिना किसी सहायता से, असहाय ज्ञान कह ना उसको, तो उसके लिए उसको कोई शरीर के विशिष्ट अवयवों की या इंद्रियों की या अन्य किसी प्रकाश की किसी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, वहाँ कोई निमित्त भी नहीं होते हैं। तो ऐसे यहाँ जो सावरण ज्ञान है अपना भी, स्वयं के अर्थ है ना अपने विषय, ज्ञान का अपना अर्थ क्या होता है? उसका ज्ञेय। तो अपने स्वयं अर्थों के ग्रहण में असमर्थ है, अतः उसे अपने ज्ञेय के प्रति प्रवृत्ति करने में इंद्रियों की सहायता की जरूरत पड़ती है, उसका निमित्त होता है। इससे इसका यह अर्थ कभी भी नहीं हो सकता कि ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है, यानी ज्ञान की उत्पत्ति तो ज्ञान से ही, आत्मा से ही हुई है, इंद्रियों से तो नहीं हुई है, परंतु उसका यहाँ निमित्त पड़ता है। यदि ज्ञान की उत्पत्ति परमार्थता, परमार्थ यानी खरेखर, इन रियलिटी, इंद्रियों से मानी जाएगी, तो इंद्रिय व्यापार के पहले ज्ञान का अभाव हो जाने से जीव द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, जो कि इष्ट नहीं है। यानी जहां इंद्रिय व्यापार नहीं है या इंद्रिय व्यापार शुरू होने के पहले ज्ञान का अभाव हो जाएगा, कल परसों भी बात हमने पढ़ी थी अपर्याप्त जीवों के, जहां अभी इंद्रिय पर्याप्ति भी नहीं हुई है उसके पहले जीव मर जाता है, क्षुद्र भव जिसको है, तो उसमें तो कोई इंद्रियों का व्यापार ही नहीं है, तो उनके ज्ञान का अभाव होता है ना, क्या होता है ना ज्ञान। हाँ, यही बात यहां बताना चाहते हैं, जो कि इष्ट नहीं है। अतः निरावरण ज्ञान इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा के बिना ही स्वयं अपने गेय में प्रवृत्ति करता है यह मानना चाहिए। यह निरावरण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की बात यहाँ चल रही है। इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा के बिना स्वयं ही गेय में प्रवृत्ति करता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। गेय में प्रवृत्ति करता है, गेयों को जान लेता है। हमारा भी स्वभाव गेयों को अपने ही द्वारा ग्रहण करने का है, परंतु वहाँ निमित्त पड़ता है बीच में, हाँ, जिसका इंद्रिया, तो हमें क्या लगता है इंद्रिया ही जान रही है। अरे अपने आत्मा का तो भान ही नहीं है, ये शरीर ही मैं हूँ और ये आँख नाक कान आदि इसी से ज्ञान होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। अभी है नहीं कहेंगे हम, ठीक कहेंगे कि अनादि से ऐसी मान्यता के साथ आए ना हम। इस प्रकार भी केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। केवल ज्ञान की सिद्धि का दूसरा तरीका है, केवल ज्ञान सिद्धि है 58, हाँ अभी और आगे बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट बता रहे, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव वाला होता है वह द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य का यह लक्षण जीव में भी पाया जाता है, इसलिए वह द्रव्य सिद्ध होता है। जीव को द्रव्य है ये सिद्ध करना है, तो द्रव्य का लक्षण क्या है, तो कहते हैं सद्द्रव्य लक्षण। ये सत कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षण। तो जीव में भी उत्पाद व्यय द्रव्य दिखाई देता है, इसलिए जीव भी द्रव्य है ये बात सिद्ध हुई। तथा उसमें ज्ञान और दर्शन रूप विशेष लक्षण के पाए जाने के कारण, अभी अपना यही विषय चल रहा है ना, चेतना सामान्य समय सार में बात चल रही और ज्ञान दर्शन हुई द्विरूपता को प्राप्त है। तो उसमें ज्ञान और दर्शन रूप विशेष लक्षण के पाए जाने के कारण, यहाँ अलग बात है, विशेष लक्षण न अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्यों को यह भिन्न है, ये किस आधार से जान सकते हैं, उसके विशेष लक्षण के द्वारा, विशेष गुणों के द्वारा। सामान्य गुण क्या सिद्ध करते कि यह द्रव्य है, और विशेष गुण क्या सिद्ध करते ये विशिष्ट द्रव्य है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल है, ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए वो जीव है, यह हम उसका ये विशेष लक्षण है। तो कहते उसमें ज्ञान और दर्शन रूप विशेष लक्षण के पाए जाने के कारण वह पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों से भिन्न सिद्ध हो जाता है। पुद्गल आदि में किस किस को लेना है, हाँ पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, बरोबर है ना, पुद्गल आदि सभी अजीव है और जीव को अलग निकाला। इस प्रकार जीव द्रव्य की स्वतंत्र सिद्धि हो जाने पर उसके धर्म रूप से केवल ज्ञान की भी सिद्धि हो जाती है। ये केवल ज्ञान ये उसका धर्म है, उसका गुण है। ज्ञान का स्वभाव ही केवल ज्ञान है, असहाय ज्ञान है, बिना किसी, क्योंकि ज्ञान अपने से जानना उसका स्वभाव है, तो ये स्वभाव है और स्वभाव में कोई निमित्त नहीं होता है, तो इसलिए ये उसका धर्म है, केवल ज्ञान उसका धर्म है। पहले तो जीव द्रव्य की स्वतंत्र सिद्धि की और फिर कहते हैं उसका धर्म है केवल ज्ञान, उसकी भी सिद्धि हो जाती है। ये केवल ज्ञान की तीसरे पद्धति से सिद्धि कर दी। चौथी बात, यदि सेकंड, अच्छा दूसरा पॉइंट ख्याल में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं, यानी केवल ज्ञान की इंद्रियों के व्यापार बिना अपने आप में प्रवृत्ति होती है, ज्ञान अपनी शक्ति से जानता है, इसलिए वहां केवल ज्ञान की सिद्धि कराना चाहते हैं। तो उसके पहले छद्मस्थों पर घटाया है कि छद्मस्थ अवस्था में चूंकि इंद्रिया है वहां पर उसका निमित्त भी बनता है, परंतु इंद्रियों के कारण जानना नहीं होता है, इंद्रियों से जानना नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से ही जानता है। क्यों ऐसा, यदि नहीं मानेंगे तो जब इंद्रिय व्यापार नहीं था, इंद्रिय व्यापार कब होगा, जब इंद्रिया बन जाएगी, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, परंतु अपर्याप्त अवस्था में जबकि इंद्रिय व्यापार नहीं है, क्या ज्ञान का पूरा लोप हुआ था कि वहां भी जानने का कार्य चल रहा था, तो वहां भी जानना चल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों से जानते नहीं है। तो केवल ज्ञान भी इंद्रियों से जानता नहीं है, यानी निरावरण ज्ञान असहाय ज्ञान है, बिना किसी अवलंबन से वो जान लेता है वो उसकी अपनी शक्ति, ये बात सिद्ध होती है। तीसरी बात तो ख्याल में है ना, पहले जीव का जीव द्रव्य है ये सिद्ध किया क्योंकि उसमें उत्पाद वेद होता है, फिर वो विशेष द्रव्य है किस बात से जाना, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से जाना, इससे वो सिद्ध हुआ है। और जीव द्रव्य सिद्ध हुआ, उसकी विशेषता को सिद्ध किया, तो केवल ज्ञान उसका धर्म है ये भी सिद्ध किया। अब चौथा पॉइंट, यदि सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान न माना जाए तो उनका अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जाता है। यानी सूक्ष्मादि पदार्थ होते ही नहीं ऐसा मानना पड़ेगा, यदि कोई उसको नहीं जानता तो सूक्ष्मादि पदार्थ का अस्तित्व है ये कैसे सिद्ध होता। तथा परमाणुओं के बिना स्कंद द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती इत्यादि हेतुओं के द्वारा, ये हेतु होते, कोई भी हमें पॉइंट सिद्ध करना है तो उसके लिए हेतु दिए जाते हैं। कहते सूक्ष्मादि पदार्थ कोई जानता ही नहीं तो वो है, उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात, स्कंद देखने में आते हैं तो परमाणुओं के इकट्ठे आकर बंधने से तो स्कंद होते हैं, इसलिए कहते कि परमाणुओं के बिना स्कंद द्रव्य की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमें स्कंद तो ख्याल में आते दिखाई देते हैं। तो इत्यादि हेतु इनके द्वारा, ये तो हेतु हो गए, हमें सिद्ध करना है ना उसके, वो हेतु कहलाते हैं, कारण कहलाते हैं। इत्यादि हेतुओं के द्वारा यद्यपि सूक्ष्म पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, वो सूक्ष्म पदार्थ है यह बात सिद्ध होती है, उसके लिए हेतु कौन से दिए? सूक्ष्मों से स्कंद भी बनते हैं, और उसका अगर ज्ञान नहीं मानेंगे तो उसका ही अस्तित्व नहीं होता, तो उसको जानने वाला इसलिए उसका अस्तित्व भी है, ये बात सिद्ध कर देते। फिर भी जो पदार्थ कभी किसी के प्रत्यक्ष न हुए हो उनमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये नियम है। क्या नियम है? देखे, हमने अनुमान से जाना, क्या जाना कि सामने बिल्डिंग के ऊपर हमें दिखाई है कि टेरेस के ऊपर से धुआं आ रहा है, तो धुआं आ रहा है वहां कुछ जला रहे हैं, ये सिद्ध होता है ना, अग्नि होनी चाहिए। ये शास्त्र में हमेशा वो पर्वत के ऊपर धूम का उदाहरण आता है, तो पर्वत के ऊपर धुआं दिखाई दिया तो वहां नीचे अग्नि होनी ही चाहिए, ये हमने कौन से ज्ञान के द्वारा जाना? तो इसको कहते हैं अनुमान ज्ञान। अनुमान ज्ञान तभी हो सकता है जब किसी ने उसको प्रत्यक्ष जाना हो, क्योंकि हमने पहले जाना, पहले देखा है, क्यों अग्नि थी रसोई में और वहां धुआं आ रहा था, तो हमने प्रत्यक्ष जाना है, तो जो प्रत्यक्ष जाना जाता है उसी का अनुमान हो सकता है। किसी जीव ने कभी अग्नि से धुएं को देखा ही नहीं है तो हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये बात यहां सिद्ध करना चाहते हैं कि सूक्ष्मादि जो पदार्थ है, जो पदार्थ कभी किसी के प्रत्यक्ष न हुए हो, किसी ने उसको प्रत्यक्ष जाना न हो, तो उनमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, उसका अनुमान भी नहीं हो सकता। तो परमाणुओं को किसी ने प्रत्यक्ष जाना है तभी हम तो उसका अनुमान लगा सकते हैं, उन्होंने जानकर बताया ना तो हमें वो पता है तो हम उसका अनुमान कर सकते हैं। इस नियम से सूक्ष्मादि पदार्थों के साक्षात्कार करने वाले, साक्षात यानी प्रत्यक्ष जानने वाले, साक्षात्कार करना यानी उसका कोई मुलाकात लेना वो बात नहीं है, साक्षात्कार करने वाले ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। देखो सूक्ष्मादि पदार्थ हम अनुमान से जानते हैं, तो जिसका अनुमान किया जाता है वो किसी के द्वारा प्रत्यक्ष जानने में आते ही है, उसके बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए सिद्ध होता है कि सूक्ष्म पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान होना चाहिए। यह कहना कि सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान क्रम से भले ही हो जाओ पर उनका एक साथ ज्ञान नहीं होता, अब इस पर आते हैं कि केवल ज्ञान है वो एक साथ सबको जानते हैं, सूक्ष्मादि आदि में वो व्यवहित और वो सब जान लेना, विप्रकृष्ट दूरवर्ती अंतरित सब कुछ तो एक साथ जानते हैं केवल ज्ञानी। कोई कहते हैं कि क्रम से भले जाने, एक साथ नहीं जान सकते, यानी केवल ज्ञान के स्वरूप का ही उन्हें पता नहीं है और उस पर शंका उठाते हैं, तो कहते हैं ऐसा युक्त नहीं है क्योंकि जिनका क्रम से ज्ञान हो सकता है उनका युगपत ज्ञान मानने में कोई आपत्ति नहीं आती है। इस प्रकार सूक्ष्मादि पदार्थों को युगपत जानने वाले केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। एक साथ सबको, यानी तीन काल के, तीन लोक और अलोक के और सूक्ष्म सहित सभी पदार्थों को, रूपी अरूपी सब कुछ एक साथ जानने वाला केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। युगपत भी हो सकता है, ये न्याय की दलीलें हैं, जिसको कहते हैं न्याय की भाषा। अब पांचवा पॉइंट, ज्ञानावरण कर्म में वृद्धि और हानि होने से जो तरतम भाव दिखाई देता है ना, अभी हमारे ज्ञान में कौन सी बातें आती है उसके द्वारा केवल ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं, तो हम भी ज्ञान के वेरिएशंस देखते हैं। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई मतिमंद है, ज्ञान की इतने बातें देखते हैं। कोई एकेंद्रीय, कोई पंचेंद्रीय, उनके भी ज्ञानों में तरतमता दिखाई देती है। तो आवरण वाले कर्मों के वृद्धि हानि से ज्ञान में भी तरतमता देखती है। जहाँ आवरण ज्यादा है वहाँ ज्ञान हीन है, जहाँ आवरण कम है वहाँ ज्ञान ज्यादा है, उससे भी केवल ज्ञान के अंश सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने अवयवी के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। यानी जीव का स्वभाव ही केवल ज्ञान है और वहां केवल ज्ञानावरण है, फिर भी उसके अंश प्रकट है। पहले बात आई थी, वो केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान तो नहीं हो रहा है पर्याय में, परंतु क्या केवल ज्ञान आवरण है इसलिए मति ज्ञान भी नहीं होता? केवल ज्ञान आवरण के उपस्थिति में, उदय में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो हो रहा है ना, तो उसको भी अंश कहा है। केवल ज्ञान स्वभाव है और अभी जो ज्ञान प्रकट है उसको अंश कहा है। वो अवयवी है और ये अवयव है, जो अपने अवयवी के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार अनुमान से भी केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। छठवां पॉइंट, जिस प्रकार सूर्य परिमित पदार्थों को ही प्रकाशित करता है, परिमित यानी गिने चुने, मर्यादित, लिमिटेड, उसी प्रकार ज्ञान भी परिमित पदार्थों को ही एक साथ जान सकता है, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को नहीं। यदि ऐसा माना जाए तो, यानी यदि ऐसी कोई किसी की शंका हो तो, त्रिकालवर्ती सभी उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वभाव है, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, विधि निषेध रूप है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? यदि कोई त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ नहीं जानता तो कह भी नहीं सकता कि सभी पदार्थ उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक है, विधि निषेधात्मक है, एकानेकात्मक है, नित्यानित्यात्मक है। नित्य तो तभी कहेंगे कि तो उन्होंने वो अनादि से अनंत काल तक उनको नित्य रूप से देखा है, तभी तो कहेंगे, नहीं तो नित्य कैसे कहेंगे? बस हम मनुष्य जितने हैं वो इतने काल तक ही हम है, बाद में है ही नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। तो जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ जान रहा है वही तो ये बातें कह सकते हैं। इससे भी त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले यानी प्रत्यक्ष जानने वाले केवल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। यद्यपि सभी पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है इत्यादि ज्ञान छद्मस्थों के भी पाया जाता है, पर इससे केवल ज्ञान का अभाव नहीं हो जाता, क्योंकि सामान्य रूप से समस्त पदार्थों का ज्ञान करना अपने ज्ञान विशेषों में अनुस्यूत ज्ञान सामान्य का काम है। क्या कहते हैं? सामान्य रूप से समस्त पदार्थों का ज्ञान करना अपने ज्ञान विशेष, ज्ञान विशेष यानी ज्ञान की पर्याय, ज्ञान पर्यायों में अनुस्यूत का अर्थ होता है ज्ञान पर्यायों में कायम जो कंटिन्यू है ऐसा। हाँ, ज्ञान सामान्य का काम है यानी जानन रूप ऐसा जो है, ज्ञान की किसको जान रहा है वो विशेष पर्याय हो गए, परंतु जानना 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 इटसेल्फ कायम है ना, वो ज्ञान सामान्य। अनुस्यूत का अर्थ है वो कंटिन्यूटी प्रवाहरूप। ज्ञान विशेषों में अनुस्थित ज्ञान सामान्य का काम है और विशेष रूप से समस्त पदार्थों का ज्ञान करना ज्ञान विशेष अर्थात केवल ज्ञान का कार्य है। इसलिए आवरण कर्म के अभाव होने पर केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है यह सिद्ध हो जाता है। यह थोड़ी अटपटी बात है। विशेष रूप से समस्त पदार्थों की बात है ना। ज्ञान सामान्य को लिया या दर्शन को लिया ही नहीं उन्होंने, पता नहीं। यदि कहा जाए कि केवल ही प्राप्त अर्थात सन्निकृष्ट अर्थ को ही ग्रहण करता है, यानी जो सामने है प्राप्त है ने वो चिपके हुए ऐसा नहीं लेना, जैसे आंखों के सामने है सन्निकर्ष है ने उनके लिमिट में है, ऐसे अर्थ को, अर्थ को यानी पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर केवली को सर्वगतत्व का प्रसंग प्राप्त होता है। सर्वगत यानी सभी के वहां जा जाकर उसने जाना। केवल ज्ञान को सर्वगत की अपेक्षा से कहते हैं, सबको जानते इस अपेक्षा से। यहां दूसरी बात हो रही, यदि ऐसा कहेंगे कि जो सामने पदार्थ है उन्हीं को जानते हैं, जैसे हम अपने आंखों के सामने उसी को जानते हैं, और हम कहेंगे हमने पूरा त्रिलोक देख लिया, तो उसका क्या कहना पड़ेगा, ये त्रिलोक के प्रत्येक पार्ट में जा जा के उन्होंने देखा है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं केवली को सर्वगतत्व यानी सब जगह जाकर जानते ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने है पदार्थ तो उन्हीं को जानते हैं ना। ख्याल में आया, सर्वगत कहना ज्ञान को वो बात अलग है, और यहां बताते हैं यदि सामने है पदार्थ तो उन्हीं को जानते हैं तो सब जगह जाकर उन्होंने जाना है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि कहा जाए कि केवली को सर्वगतत्व का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संकोच और विस्तार के कारणों की अपेक्षा से होने वाले योग का वहां अभाव है। यदि कहा जाए यानी अभी योग का अभाव हो जाए तो वहां उनका सब जगह जाना भी नहीं होगा। यदि कहा जाए केवली आत्मा एक देश से ही पदार्थों को ग्रहण करता है, सो भी कहना ठीक नहीं है। ये केवल ज्ञानी आत्मा विशिष्ट एक भाग से ही पदार्थों को जानता है ऐसा अगर कहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के सभी प्रदेशों में विद्यमान आवरण कर्म के निर्मूल विनाश हो जाने पर केवल एक अवयव से पदार्थों का ग्रहण मानने में विरोध आता है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं तो कितने आत्म प्रदेशों के द्वारा देखते हैं, तो देखने रूप जो उपयोग का व्यापार चलता है वहां चक्षु इंद्रिय के यहाँ जितने आत्म प्रदेश है उतने प्रदेशों के द्वारा वहां चलता है कार्य। अब केवल ज्ञानी कितने प्रदेशों के द्वारा जानते हैं, कि पूरे प्रदेशों के नहीं थोड़े से प्रदेशों के द्वारा जाने, ऐसा नहीं है, क्योंकि आवरण तो पूर्ण आत्म प्रदेशों से हट गया है, तो थोड़े ही प्रदेशों से जानते हैं ऐसा कहना भी युक्ति संगत नहीं है। क्या कहते फिर देखेंगे हम इसको, कि आत्मा के सभी प्रदेशों में विद्यमान आवरण कर्म के निर्मूल विनाश हो जाने पर, आवरण कर्म कहां पर था, पूरे आत्मा पर, और वो संपूर्ण नष्ट हुआ, तो सभी आत्म प्रदेश जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ये बात है। तो केवल एक अवयव से पदार्थों का ग्रहण मानने में विरोध आता है। इसलिए प्राप्त अप्राप्त सभी पदार्थों को युगपत अपने सभी अवयवों से केवल ही जानता है। क्या कहते हैं, ये पदार्थ सामने हो काल की अपेक्षा या क्षेत्र की अपेक्षा भी दूर क्यों न हो, सभी पदार्थों को जानते हैं। तो प्राप्त और अप्राप्त युगपद जानते हैं, क्रम नहीं है, और अपने सभी अवयवों से जानते हैं। ये बात सिद्ध हो जाती है। अब उसके लिए फिर गाथा वृद्धित करते हैं। कहा भी है, सभी अवयव ने असंख्यात प्रदेशों से, सभी अवयवों से हम गाथा देखेंगे ऊपर की। न्योज्ञे कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबंधरी दाहे अग्निर्दाहको न स्याद असति प्रतिबंधरी। ये श्लोक है, एक्चुअली श्लोक है, वो संस्कृत है, उन्होंने भी उद्धृत ही किया था। प्रतिबंधक के नहीं रहने पर ज्ञाता ज्ञेय के विषय में अज्ञ कैसे रह सकता है? प्रतिबंधक कौन है? कर्म। तो वो कर्म पूर्ण नष्ट हुआ है, तो ज्ञाता ज्ञेय के विषय में अज्ञ कैसे रह सकता है? वो ज्ञेय को नहीं जानता, ये कैसी बात हो सकती है? अर्थात प्रतिबंधक कारण के नहीं रहने पर ज्ञान स्वभाव होने से ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ को अवश्य जानेगा। ऊपर लिखा ना, ज्ञो ज्ञ ज्ञेय कथम अज्ञ स्याद असति प्रतिबंधरी। असति नहीं होने पर, प्रतिबंधरी प्रतिबंधक। फिर भी यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ को न जाने तो प्रतिबंधक यानी मणि मंत्र आदि के नहीं रहने पर दाह स्वभाव होने से अग्नि को दाह पदार्थ को नहीं जलाना चाहिए। के मणि मंत्र प्रतिबंधक के नहीं रहने पर दाह स्वभाव होने से अग्नि को दाह पदार्थ को नहीं जलाना आना चाहिए। चाहिए हुआ, चाहिए करो, क्या कहना चाहते हैं मैं बताती। ये दृष्टांत के द्वारा हम सिद्धांत समझेंगे। अग्नि जलाती है, किसको जलाती है? हाँ, सभी पदार्थों को। जो दाह है जलने योग्य को जलाती है, नहीं समझे? जलने योग्य को जलाती है ना। हम गैस ऑन करते हैं तो सिगड़ी भी जल जाती होगी, अंदर से जो गैस आती है उसी में वो तो अग्नि जलती रहती है। क्यों? तवा ऊपर रखते हैं, तवा जल जाता होगा? नहीं जलता है। तो दाह्य पदार्थों को ही जलाते हैं। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है? क्योंकि अग्नि का दाह स्वभाव है, और वो किसको जलाएगी? जलने योग्य दाह्य पदार्थों को जलाएगी। ऐसे ज्ञाता यानी जानना स्वभाव है, तो किसको जानेगा? तो ज्ञेयों को जानेगा। तो ज्ञेय स्वभाव है ना प्रत्येक पदार्थ में, क्या नहीं है? कौन सा आपको ऐसा कोई गुण मालूम है? हाँ, प्रमेयत्व गुण है। तो सभी ज्ञेयों में ये प्रमेयत्व गुण है, तो वो जानने में आएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अग्नि जलाए ये बात सही है, परंतु प्रतिबंधक अगर होगा कोई तो अग्नि उसको नहीं जला सकती। प्रतिबंधक के होने पर, जैसे मणि और मंत्र कहा यहां, मंत्र के द्वारा, या जो कोई हम ऐसा अलग सोचते हैं कि बीच में कोई हमने ऐसी वस्तु रख दी कि जो जलती नहीं है, एस्बेस्टोस आदि, तो उसके ऊपर कुछ रखेंगे तो अग्नि जला नहीं सकती। उसके बीच में प्रतिबंधक कोई आ गया, तो प्रतिबंधक अगर नहीं होता तो ये तो जला देती। प्रतिबंधक वहां नहीं होगा पार, तो अग्नि जला देती। तो यहाँ ऐसा भी करते हैं ना कि अग्नि जल रही है और फिर आजू बाजू के मकान बचाने के लिए कोई प्रतिबंधक पदार्थ डाल देते हैं। अभी हम मंत्र तंत्र की बात नहीं करेंगे, हमें जो मालूम है वो कहेंगे। हा? तो उसके क्या होता है कि ये जल जला नहीं सकती, यानी वहां कोई प्रतिबंधक है, ये बात सिद्ध होती है। और प्रतिबंधक नहीं होता तो अग्नि तो दाह्य योग्य सबको जला देगी। ऐसे ही यहां प्रतिबंधक कोई नहीं रहा तो ज्ञाता जानने योग्य सभी पदार्थों को जान लेगा। ये बात यहां बता रहे कि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ को न जाने तो प्रतिबंधक के नहीं रहने पर दाह स्वभाव होने से अग्नि को दाह्य पदार्थों को नहीं जलाना चाहिए, यानी अग्नि भी वो नहीं जलाती ऐसा सिद्ध होगा। परंतु ऐसा तो देखने में नहीं आता है, हम तो ऐसा ही देखते हैं कि जहां कोई प्रतिबंधक न हो तो दाह्य जो पदार्थ है अग्नि तो उनको जला ही देती है। विशेषार्थ, देखो ये केवल ज्ञान की सिद्धि कितने अलग अलग पद्धति से कर दी उन्होंने। पहले यह सिद्ध कर ही आए हैं कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि होती जाती है। आदि गुण में किस किस को लिया याद है? सम्यक दर्शन आदि गुण कहाँ था? सम्यक्त्व, संयम, वैराग्य और योग निरोध। तो आदि गुणों की वृद्धि हो जाती है तदनुसार, यानी क्या होता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, इनकी हानि होती है। तदनुसार ज्ञानांशों के प्रतिबंधक कर्मों का अभाव भी होता जाता है, ज्ञानावरण आदि का अभाव भी हो जाता है। इस प्रकार अंत में ज्ञान के अंशों के आवरक कर्मों का पूरी तरह से अभाव हो जाने पर समस्त ज्ञानांश प्रकट हो जाते हैं, तथा समस्त ज्ञानांशों के प्रकट हो जाने पर केवल एक अंश से केवली जानते हैं, शेष अंशों से नहीं, यह कैसे संभव है? यानी किसी एक ही अवयव से, एक ही थोड़े से प्रदेशों से जानते, ये भी सिद्ध नहीं होता है। शेष ज्ञानांशों के आवारक कर्मों के, आवारक है कि आवरक है? शेष ज्ञानांशों के आवरक कर्मों के विद्यमान रहने पर ही उनकी प्राप्त और अप्राप्त पदार्थों के ग्रहण करने में प्रवृत्ति न हो, यह तो संभव है। पर यह संभव नहीं है कि प्रतिबंधक कारण भी नष्ट हो जाए फिर भी ज्ञान अपने गेय में प्रवृत्ति न करे। क्या कहते हैं? जब तक आवरक कर्म है, प्रतिबंधक कारण है, तब तक ये कह सकते हैं कि इतने पदार्थों को नहीं जाना। परंतु संपूर्ण आवरक कर्म मिट जाए और फिर भी ज्ञान सभी गेयों को नहीं जाने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूखे ईंधन के रहते हुए भी अग्नि तभी तक उसे नहीं जलाती जब तक उसके प्रतिबंधक मणि मंत्रादि विद्यमान रहते हैं। पहले तो ये विद्या थी ना मंत्रों के द्वारा, मणि आदि के द्वारा, वो तो जलाने से रोक भी सकते थे। हाँ, पर मणि मंत्रादि के वहां से हटते ही अग्नि अपने कार्य को उसी समय करने लगती है। यदि प्रतिबंधक कारण वहां से हटा लिया जाए और फिर भी अग्नि जलाने रूप अपने कार्य को न करे तो वह अग्नि ही नहीं कही जा सकती। यही बात ज्ञान के संबंध में भी समझना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि केवली अपने ज्ञान के एक अंश से नहीं जानते, किंतु वे समस्त ज्ञानांशों से युगपत अपने गेय को ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि केवली अभूतार्थ का प्रतिपादन करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असत्य के कारणभूत राग, द्वेष और मोह का उनमें अनुभव है। ये तो हमने पहले भी सिद्धांत प्रवेशिका में बहुत बार सुने ना, झूठ कौन बोलता है? जिसके कषाय हो, मोह राग द्वेष हो, या जिसके अज्ञान हो, तो यहाँ केवली कह रहे हैं पूरा तो प्रतिबंधक तो पूरा मिट गया है, तो वो तो पूरा जानते ही है, फिर भी कौन झूठ बोलेगा? तो रागी द्वेषी होगा तो बोलेगा, परंतु ये तो पहले वितरा हुए बाद में सर्वज्ञ हुए हैं, तो इनके तो मोह राग द्वेष का पूर्ण अभाव है, इसलिए वो असत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकते। शंका, इस प्रकार के वे महावीर भगवान सकल कर्म कलंक से रहित है या नहीं? अब महावीर भगवान ऐसे सर्वज्ञ है कि नहीं है, ये बात यहां पूछ रहे। इनमें से पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान को सकल कर्मों के रहित मान लेने पर वे अशरीर हो जाएंगे। महावीर भगवान कह रहे हैं ना, तो वो तीर्थंकर अवस्था अरिहंत अवस्था की बात है, इसलिए उनका उपदेश नहीं बन सकेगा, क्योंकि महावीर भगवान के द्वारा यह उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। हम महावीर भगवान कह रहे हैं, केवल ज्ञानी कह रहे हैं, तो उनके उपदेश की अपेक्षा से उनको महावीर भगवान की तीर्थंकर के रूप में हम यहाँ उसकी याद कर रहे हैं, या उसका जो द्वादशांग वाणी का उद्गम कहाँ से हुआ उसकी बात बता रहे। इसी प्रकार वे सकल कर्म से युक्त है, यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। प्रश्न क्या पूछा था? भगवान सकल कर्मों से सहित है या रहित है? तो सकल कर्म ने आठों कर्म, आठों कर्म से रहित बताते तो वो तो सिद्ध हो चुके होते जो बाद में हुए हैं उपदेश के बाद में, अरिहंत अवस्था के बाद, पर यहाँ अरिहंत अवस्था की बात चल रही। और यदि कहेंगे सकल कर्मों से सहित है तो चार घाती भी है ऐसा मानना पड़ेगा, तो वो भी बात नहीं है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि सकलंक मान लेने पर उन्हें उनमें देवत्व नहीं बन सकेगा। कौन सा कलंक है यहाँ पर? चार घाती कर्म है ना, यानी वो पूर्ण वितरागता भी नहीं है और ज्ञान भी अधूरा है, यानी वे सर्वज्ञ भी नहीं है, वितराग भी नहीं, तो उनमें देवत्व भी नहीं बन सकेगा। इसलिए उनके द्वारा उपदिष्ट यानी उपदेशित वचन कलाप यानी वचनों का समूह आगम नहीं हो सकेगा। उसको हम आगम तभी कहेंगे जबकि उनमें देवत्व हो, वे वितरागी और सर्वज्ञ हो। यदि कहा जाए कि अदेव का वचन भी आगम हो जाओ, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे मानने पर मुहल्ले गली कूचों में घूमने वाले आवारा और धूर्त पुरुष के वचन को भी आगमपने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। ये तो शंकाकार ने इतनी सारी बातें उठाई। शंकाकार स्वयं कहते हैं कि महावीर भगवान को समस्त कर्मों का कर्म रहित है वे के सहित है, रहित हो जाते तो सिद्ध हो जाते, और सहित अगर मानते तो उनके देवत्व नहीं बनेगा, और देव नहीं होगे तो उनके वाणी को आगम नहीं कहेंगे। अगर देव की वाणी को आगम कहते, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कोई भी ऑर्डिनरी मानुष है, यहाँ तो आवारा और दूर पुरुष के वचन को भी आगम मानना पड़ेगा। इतनी पूरी तो शंका है, उसका समाधान आगे पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं। पूर्वोक्त दो पक्षों में से वे सकल कर्म कलंक से रहित है, यह पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिन शासन में अरिहंत अवस्था को प्राप्त भगवान महावीर को सकल कर्म कलंक से रहित नहीं माना है, उसी प्रकार दूसरे पक्ष में दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि देवत्व का नाश करने वाले चार घातिया रूपी कर्म कलंक के अभाव से उनमें पूर्ण रूप से देवपने की उत्पत्ति हो गई है। ये चार घाती कर्म कैसे देवपना को नहीं होने देते? ये चार घाती कर्म नष्ट हो गए तो उनके देवपना की प्राप्ति हो गई है। सकल अवगुणों के कारणभूत चार घाती कर्मों से देवत्व का विनाश होता है। सभी अवगुणों के कारणभूत ये चार घाती कर्म हैं। परंतु अरहंत अवस्था को प्राप्त वर्धमान जिनमें चार घाती कर्म नहीं है, जिससे वर्धमान भगवान के देवत्व का अभाव होवे, अर्थात चार घाती कर्मों के अभाव हो जाने के कारण उनके देवत्व का अभाव नहीं कहा जा सकता, कहा भी है। अब यहां भी दो गाथाएं उपलब्ध उद्धृत किए उन्होंने। क्षीणे दंशन मोहे चरित्त मोहे तहे वघायतिये सम्मत्तनान विरिया खैयाते होंति केवलिनो। नीचे देखेंगे अर्थ उसका। क्षीणे दंशन मोहे चरित्त मोहे, दंशन मोह का और चारित्र मोह का क्षय होने पर, और के तहेव उसी प्रकार घायतिये, तीन घाती कर्म, कौन से तीन घाती कर्म रहे? मोहनी, ज्ञानानंद दर्शन और अंतराय। देखिए क्या कहते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म के क्षय हो जाने पर तथा उसी प्रकार शेष तीन घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर सम्मत्त नान विरिया खैयाते होंती केवलिनो, केवली जिनके सम्यक्त्व ज्ञान और वीर्य ये क्षायिक भाव प्रकट हो जाते हैं। अब आगे 15 नंबर। उपन्नम्यनंते नठम्यछादुमत्थियेणाने देविन्ददानविन्दा करेंति पूजं जिनवरस्। क्षौपशमिक ज्ञान के नष्ट होने जाने पर और अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने पर, उपन्नमी अनंते यानी अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ, और नठम्य छादुमत्थिये नाने छद्मस्थ ज्ञान नष्ट हुआ यानी क्षौपशमिक ज्ञान नष्ट हुआ, ऐसा होने पर क्या होते? देविंद दानविंदा, देवेंद्र और दानवेंद्र, असुरेंद्र भी कहते ना, दानवेंद्र करेंत पूजम जिनवरस, जिनवर की पूजा करते हैं। केवल ज्ञान के प्रकट होने पर ये सारे इंद्रादि आकर उनकी पूजा करते हैं। 50 नंबर का पॉइंट। अभी चार अघातिया कर्म विद्यमान है, इसलिए वर्धमान जिनके देवत्व का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि चार अघातिया कर्म देवत्व के घात करने में असमर्थ है, इसलिए उनके रहने पर भी देवत्व का विनाश नहीं हो सकता। वेदनी आयु नाम और गोत्र के रहने पर भी परमात्मा पना का नाश नहीं होता उनके। शंका, चार अघातीय कर्म देवत्व के विरोधी नहीं है, यह कैसे जाना जाता है? चार अघातीय कर्म यदि देवत्व के विरोधी होते तो उनकी अघाती संज्ञा नहीं बन सकती थी। इससे प्रतीत होता है कि चार अघातीय कर्म देवत्व के विरोधी नहीं है। इसी का और भी स्पष्टीकरण करते हैं, ये स्वयं वीरसेन आचार्य उसका और स्पष्टीकरण करते हैं। नाम कर्म और गोत्र कर्म तो अवगुण के कारण है नहीं, यानी जीवों के गुणों का तो घात नहीं होता है, क्योंकि जिन क्षीण मोह है, जिन क्षीण मोह है, इसलिए उनमें नाम और गोत्र के निमित्त से राग द्वेष संभव नहीं हो सकते। वो जिनेंद्र भगवान जो है वो क्षीण मोह है, उनका मोह क्षय हो चुका है, इसलिए नाम और गोत्र के निमित्त से होने वाले राग द्वेष की वहां उत्पत्ति संभव नहीं है। आयु कर्म भी अवगुण का कारण नहीं है, क्योंकि क्षीण मोह जिन भगवान में वर्तमान क्षेत्र के निमित्त से द्वेष नहीं उत्पन्न होता है, और आगे होने वाले लोक शिखर पर गमन के प्रति सिद्ध के समान उनके उत्कंठा नहीं है। सिद्ध के समान क्यों लिखा? ऊपर क्या है? सिद्धस्येव पड़ी, सिद्धस्येव उत्कंठा भावादोच, यानी सिद्धों के समान उनके उत्कंठा का अभाव है, ऐसा उत्कंठा का अभाव की समानता लेना। लोह सिहर गमनम पड़ी सिद्धस्येव उत्कंठा भावादोच, यानी जैसे उनके सिद्धों की उत्कंठा नहीं, ऐसे इनके भी नहीं होती है, ऐसा। यानी जैसे सिद्ध लोग शिखर पर जाते हैं, यानी सिद्ध होकर वहां गमन करेंगे, उसके प्रति इनके कोई उत्कंठा नहीं है कि मैं कब जाऊंगा, अभी राग द्वेष का अभाव है ना इसकी बात नहीं। जैसे सिद्धों में भी नहीं है वैसे लेना, या सिद्धों के समान लोक के शिखर पर ऐसा लेना, यानी सिद्ध जैसे लोक के शिखर पर विराजमान है वैसे वहां जाने के प्रति कुछ ज्यादा आतुर हो गए हो कि मैं कब जाऊंगा कैसे जाऊंगा, हम कहीं जाना है तो ऐसे, तो भी यहाँ द्वेष नहीं है, इस क्षेत्र के प्रति कोई द्वेष नहीं है और वहां जाने के प्रति उत्सुक नहीं है, ये बात है। इससे प्रतीत होता है कि केवली जन के विद्यमान आयु कर्म अवगुणों का कारण नहीं है, तथा वेदनीय कर्म भी अवगुणों का कारण नहीं है, क्योंकि यद्यपि केवली जिनके वेदनीय कर्म का उदय पाया जाता है फिर भी वह असहाय होने से, ये क्यों असहाय हो गया, वो अवगुण उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसका सहायक कौन था, मोनिय था, मोनिय के उदय में ही ये सुख दुख रूप वो वेदन करा सकता है, वेदन ही है ना वेदन कराना, तो मोनिय के अभाव में सुख रूप या दुख रूप कोई वेदन उनके नहीं है, तो इसलिए कहते हैं वो असहाय होने से अवगुण उत्पन्न नहीं कर सकता। चार घातिया कर्मों की सहायता से ही, ये चारों लिया, वेदनीय कर्म दुख को उत्पन्न कर सकता है, परंतु केवली जिनके चार घातिया कर्म नहीं है, इसलिए जल और मिट्टी के बिना बीज जिस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता, क्या क्या उदाहरण देते हैं, बीज का अपना क्या कार्य क्या है, अंकुर रूप से उसकी उत्पत्ति होना, तो न मिट्टी है न जल है, तो उसके बिना जिस प्रकार बीज अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार वेदनीय भी घाती चतुष्क के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता। हाँ, चारों को लिया, शंका, दुख उत्पन्न करने वाले वेदनीय कर्म के दुख उत्पन्न कराने में घाती चतुष्क सहायक है ऐसे कैसे जाना जाता है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना। समाधान, यदि चार घातिया कर्मों की सहायता के बिना भी वेदनीय कर्म दुख देने में समर्थ हो तो केवली जिनके रत्नत्रय की निर्बाध प्रवृत्ति नहीं बन सकती है, इससे प्रतीत होता है कि घाती चतुष्क की सहायता से ही वेदनीय अपना कार्य करने में समर्थ होता है। हाँ, केवली जिन घाती कर्म के नष्ट हो जाने पर भी वेदनीय कर्म दुख उत्पन्न करता है, यदि ऐसा माना जाए तो केवली जिनको भूख और प्यास की बाधा होनी चाहिए, जो कोई मानते हैं ना, तो ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां चार घाती कर्म है नहीं और फिर भी भूख और प्यास कोई मानते हैं तो ये उनकी धारणा मान्यता गलत है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि भूख और प्यास में भात विषयक और जल विषयक, भात यानी वो तो कुछ खाना, कवल, भात विषयक और जल विषयक तृष्णा के होने पर, प्यास यानी क्या है, जल संबंधी तृष्णा, और भूख कुछ खा लेवे ऐसी तृष्णा होने पर केवली भगवान को मोहिपने की आपत्ति प्राप्त होती है, कोई उनको अन्न और जल का ग्रहण करने वाले मानते हैं तो उनको मोहिपना है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। यदि कहा जाए केवली जिन तृष्णावश भोजन नहीं करते, तृष्णावश भोजन नहीं करते, किंतु रत्नत्रय के लिए भोजन करते हैं। ये ऐसे दलील करने वाले भी है ना, अभी उनमें तो कोई तृष्णा है नहीं है, फिर भी रत्नत्रय की साधना के लिए भोजन करते हैं, ऐसा कोई कहेंगे तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। क्योंकि केवली जिन पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वे रत्नत्रय अर्थात ज्ञान, संयम और ध्यान के लिए, रत्नत्रय का अर्थ क्या है, ज्ञान, संयम और ध्यान के लिए भोजन करते हैं, यह बात संभव नहीं है। आगे इसी का स्पष्टीकरण करते हैं, स्वयं वीरसेन आचार्य ने इतनी बातें लिखी है उसके संबंध में। केवली जिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो भोजन करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा केवल ज्ञान से बड़ा और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने योग्य है नहीं, जिससे उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवली जिन भोजन करे। इससे निश्चित हो जाता है कि केवली जिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो भोजन करते नहीं है। संयम के लिए केवली जिन भोजन करते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें यथाख्यात संयम की प्राप्ति हो चुकी है। ध्यान के लिए केवली जिन भोजन करते हैं यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से त्रिभुवन को जान लिया है, इसलिए उनके ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ ही नहीं रहा। क्या कहना चाहते हैं? ध्यान किसको कहना, ध्यान किसको कहना, यानी उपयोग को अन्य पदार्थों से हटाकर किसी एक पदार्थ पर केंद्रित करना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही बात पर। अभी उनके त्रिभुवन के समस्त लोकालोक के समस्त पदार्थ उपयोग रूप ज्ञान में है, तो कौन से पदार्थों से हटाना और कहां लगाना है, स्व और पर सभी कुछ ज्ञान में आ रहा है, उपयोग रूप ज्ञान की बात है। ये छद्मस्थ का तो उपयोग तो कुछ विशेष पदार्थ पर केंद्रित होगा, अब यहां ना कहां हटाना और कहां लगाना ऐसी कोई बात ही नहीं रही, तो ऐसा ध्यान उनको नहीं, उनको तो ध्यान का फल प्राप्त हुआ है, फिर भी ध्यान क्यों कहते हैं उनके, वहां भी शुक्ल ध्यान के पाया तीसरा और चौथा बताया है, तो ये उपचार से बताया, क्यों, क्योंकि ध्यान का फल जो निर्जरा है वहां चल रही है, वो निर्जरा को देखते हुए उनके ध्यान है ऐसा कहेंगे, कहने में भी आता है, परंतु सचमुच देखा जाए तो उनके ध्यान, कौन सा ध्यान, कि कहीं से उपयोग को हटाओ और कहीं एक पदार्थ में लगाओ, ऐसा ध्यान उनके है ही नहीं है। इसलिए क्या कहा, देखो, ध्यान करने के कोई पदार्थ ही नहीं रहा, क्यों, सबको जान लिया है। ख्याल में आई ये बात, जब नीचे की अवस्था में हम कहते हैं ध्यान करो तो क्या करते, क्योंकि उपयोग इधर उधर इतना भटक रहा है, तो वहां कहेंगे केवली को भी सब कुछ उपयोग में जान रहे, परंतु वो पूर्ण वितरागता के सहित जान रहे सबको, और यहाँ क्या हो रहा है, कुछ जानने जाओ अभी अपने अलावा, तो वहां तो इसके राग की उत्पत्ति होती रहती है, क्योंकि अभी वही है अनादि से, ये बनारसी दास की भाषा में कहना है तो आगम पद्धति चल रही है ना, बंद पद्धति चल रही है, तो वही चलेगी अभी, इसलिए वहां एक पदार्थ पर केंद्रित करने का, इसलिए वहां स्व पर उपयोग की बात की। मुनि अवस्था में श्रेणी में तो कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान का विषय होता है, क्योंकि वहां भी प्रचुर स्व संवेदन भी है और वितरागता इतनी बड़ी है कि उनको अभी उन पदार्थों को जानने से राग की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो कहेंगे किसी भी एक पुद्गल के बारे में भी वो उनका ध्यान चलेगा, तो भी उनको ध्यान कहेंगे वहां पर। तो पृथक वितर्क विचार में तो उनको पलटता है ना, गेय भी पलटता है, श्रुत के शब्दों को भी अलग अलग शब्दों को भी विषय बनाते हैं, अलग अलग द्रव्यों को भी विषय बनाएंगे। तो यहां ये बात है, ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ ही नहीं रहा, इसलिए कहते हैं अभी उनको ना ज्ञान बढ़ाना है, ना संयम बढ़ाना है और ना ही ध्यान करना है, तो इसलिए कहते हैं भोजन करने का कोई कारण नहीं रहने से केवली जिन भोजन नहीं करते हैं यह सिद्ध हो जाता है। विशेषार्थ, आगम में घातिया और रह गया है, और अघातिया के भेद से कर्म दो प्रकार के बतलाए हैं, उनमें से जो जीव के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य क्षायिक सम्यक्त्व आदि क्षायिक भावों का। ये आदि में किस किस को लेना, क्षायिक भाव कितने हैं? नौ। कौन कौन से है? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, हाँ, क्षायिक चारित्र, और ये अंतराय के अगेंस्ट जो है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, हाँ, ये सब नौ क्षायिक भाव है। तो क्षायिक भावों का और मति ज्ञान आदि क्षायक्षमिक भावों का घात करते हैं, उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। घाती कर्म किसको कहना, जो क्षायिक भावों का और क्षायक्षमिक भावों का घात करते हैं, उन्हें घातिया कर्म कहा। ये अलग टाइप की परिभाषा है ना, मति ज्ञान आदि क्षायक्षमिक भावों का भी उनका घात चलता है, वो घातिया कर्म है। तथा जो जीव के अव्याबाध और अवगाहनत्व आदि का घात करते हैं, तथा जिनके उदय से सुख दुख, उच्च नीच गोत्र और शरीर आदि की प्राप्ति होती है, उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। ये उनमें चारों को यहां इसमें समेट लिया है। अव्याबाध का घात करने वाले कौन से हैं? वेदनीय। और अवगाहनत्व का और सुख दुख तो फिर वेदनीय लिया, उच्च नीच गोत्र में गोत्र लिया, सूक्ष्म वस्तु को नहीं लिया, और शरीर आदि की प्राप्ति में नाम कर्म लिया। इस प्रकार दोनों प्रकार के कर्मों के कार्यों का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घातिया कर्म ही देवत्व के विरोधी है, अघातिया कर्म नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता, वितरागता, निर्दोषता और हितोपदेशिता ये देव की विशेषताएं हैं, जो घातिया कर्मों के अभाव होने पर ही प्रकट होती है। अतः अरहंत परमेष्ठी के चारों अघातिया कर्मों का उदय पाए जाने पर भी उनसे उनके देवत्व में कोई बाधा नहीं आती। यानी उनके अभी चार अघातिया कर्मों का उदय चल रहा है, वहां सत्ता में पड़े हैं, उदय भी में भी है, फिर भी उनके देवत्व में कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है। यद्यपि नाम कर्म के उदय से शरीर आदि और गति आदि रूप अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तथा गोत्र कर्म के उदय से पर्याय में उच्च और नीचपना उत्पन्न होता है, पर केवली भगवान के इन शरीर आदि में राग और द्वेष उत्पन्न होने के कारणभूत मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए नाम और गोत्र कर्म के कार्य उनमें रहते हुए भी उन कार्यों में उनके राग और द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होते। आयु कर्म अवगाहनत्व नामक प्रतिजीवी गुण को प्रकट नहीं होने देता है। ये आयु को यहाँ गया। आयु कर्म के निमित्त से उनके क्षेत्र जनित दोषों की संभावना की जा सकती है और अन्य क्षेत्र के प्रति जाने की उत्कंठा भी कही जा सकती है, पर मोनिय का अभाव हो जाने के कारण केवल आयु के कर्म के निमित्त से उनके न तो जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उस क्षेत्र के संसर्ग से दोष ही उत्पन्न होते हैं और न ऊर्ध्वगमन के प्रति उत्कंठा ही पाई जाती है। इस प्रकार अब यहीं रुकते हैं हम, ये वेदनीय कर्म की बात हम कल करें। हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।